नमस्कार भारत 22 मई दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। मुस्लिम बहुल देशों को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश, चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष आस्था की लड़ाई नहीं, अच्छाई और बुराई के बीच जंग।
मुस्लिम नेशंस मस्ट बी विलिंग टू टेक ऑन द बर्थ।
अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक कॉन्फ्रेंस में साथ आने वाले भारत और जापान क्या दे सकते हैं चीन को चुनौती?
चीन ने वन बेल्ट वन रोड का प्रपोजल दिया है, उसी के लाइंस पे भारत और जापान भी एक अनऑफिशियल एशिया अफ्रीका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात सामने आ रही है।
और IPL 10 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पुणे को एक रन से हराया, कप्तान रोहित शर्मा बोले,
कोशिश यही थी कि टाइट बॉलिंग डालना है, फील्डिंग एफर्ट 100% से ज्यादा देना है।
सुनवाएंगे वसतुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर मध्य पूर्व में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब में अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं को दिए भाषण में ट्रंप ने ईरान की आलोचना की थी। इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्री ने एक मजाकिया ट्वीट में सऊदी अरब को लोकतंत्र और उदारवाद का गढ़ बताते हुए कहा कि अमरीका नए हथियार सौदों से सऊदी अरब से अरबों डॉलर कमा रहा है। अपने बहुप्रतीक्षित भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई धर्मों या सभ्यताओं के बीच लड़ाई नहीं है। उन्होंने इसे बुराई से अच्छाई की लड़ाई बताते हुए मुस्लिम देशों के नेताओं से अपने देशों से चरमपंथ को खत्म करने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि रविवार को दागी गई मिसाइल में सॉलिड फ्यूल वेपन का परीक्षण किया गया, जिसका अंतिम बार फरवरी में परीक्षण किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने फॉक्स न्यूज से कहा है कि हो सकता है कि उत्तर कोरिया परीक्षण करने का नाटक कर रहा हो। उन्होंने कहा, ये परीक्षण निराश और परेशान करने वाले हैं और हमारी मांग है कि वो इन परीक्षणों को रोकें, क्योंकि यदि वो ये परीक्षण नहीं रोकते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपना नज़रिया नहीं बदला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो दबाव के कारण परीक्षण करने का नाटक कर रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि उत्तर कोरिया को दबाव महसूस होने लगा है। सीरिया की सरकार का कहना है कि देश में गृह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सरकारी सैन्य बलों के पास मध्य शहर होम्स का संपूर्ण नियंत्रण है। होम्स के प्रांतीय गवर्नर तलाल बराजी ने कहा कि शहर को रूस के हस्तक्षेप से हुए समझौते के बाद हथियारों और लड़ाकों से पूरी तरह खाली करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि अलवईर क्षेत्र से अंतिम लड़ाके भी बसों में भरकर जा चुके हैं। ये विद्रोहियों के कब्जे वाला अंतिम इलाका था। सरकारी सैन्य बलों की सालों की घेराबंदी के बाद होम्स से अधिकतर लड़ाके 2014 में ही चले गए थे। ये लड़ाके अब उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब गए हैं, जो अब भी विद्रोहियों के नियंत्रण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन में हैजा फैलने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह अभूतपूर्व गति से फैल रहा है। पिछले महीने में हैजा से 250 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि रोजाना सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं और जल्द ही ये महामारी का रूप ले सकता है। दूषित पानी और भोजन के कारण होने वाली इस बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन गृह युद्ध के कारण यमन की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं, जिसकी वजह से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। यमन में हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब की मदद से लड़ रहे सरकारी बलों के बीच संघर्ष जारी है। ब्राजील की पुलिस ने साओ पाउलो के मध्य इलाके से ड्रग तस्करी संबंधी आरोपों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस इलाके में कोकीन आसानी से बेची और खरीदी जाती रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद दर्जनों नशेड़ियों ने हिंसक प्रतिक्रिया देते हुए कई वाहनों में तोड़फोड़ की है और दुकानें लूट ली हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति मिशेल टेमेर के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। टेमेर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है। देश भर में 15 से ज्यादा शहरों में उनके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। टेमेर भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले जिन श्रोताओं ने बीती रात आईपीएल का फाइनल मैच नहीं देखा उन्हें हम बता दें कि हैदराबाद में खेले गए और आखिरी ओवर तक रोमांचक रहे इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पुणे सुपर जायंट्स को एक रन से हरा दिया। हम इस मैच के बारे में विस्तार से बात करेंगे। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण मुश्किलों में घिरे लोगों का हाल भी बताएंगे और अहमदाबाद में आज से शुरू हो रही एक खास कॉन्फ्रेंस के मकसद पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर पहला विदेशी दौरा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कल सऊदी अरब की राजधानी में 55 मुसलमान बहुल देशों के नेताओं को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष आस्थाओं के बीच लड़ाई नहीं बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच जंग है। उन्होंने सऊदी अरब की मेहमान नवाजी की तारीफ की तो ईरान पर तीखा हमला किया। ईरान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पूरा ब्यौरा विस्तार से बता रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई को बुराई से अच्छाई की लड़ाई कहा और मुस्लिम नेताओं से अपने देशों से चरमपंथ को खत्म करने का आह्वान किया। ट्रंप ने कहा कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई धर्मों या सभ्यताओं के बीच की लड़ाई नहीं है। अपने भाषण में ट्रंप ने ईरान की कई बार आलोचना करते हुए उस पर मध्य पूर्व में नस्लीय हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान सीरिया में राष्ट्रपति असद के अपराधों का भी समर्थन कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms...
लेबनान से लेकर इराक और यमन तक ईरान चरमपंथियों को हथियार और प्रशिक्षण देता है और मध्य पूर्व में अराजकता फैलाने वाले अन्य कट्टरपंथी समूहों की मदद करता है। ईरान दशकों से नस्लीय हिंसा और चरमपंथ की आग को बढ़ा रहा है। ईरान की सरकार नरसंहारों का समर्थन करती है, इसराइल की बर्बादी का प्रण लेती है और अमेरिका के अंत और यहां बैठे कई नेताओं और उनके देशों के अंत की कामना करती है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्षेत्रीय नेताओं से एकजुट होने के लिए भी कहा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने सऊदी अरब और अमरीका के बीच हुए रक्षा सौदे की आलोचना की है। एक मजाकिया ट्वीट में उन्होंने सऊदी अरब को लोकतंत्र और उदारवाद का गढ़ कहा और संकेत दिए कि अमेरिका सऊदी अरब को दूहकर अरबों डॉलर कमा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि ट्रंप यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों को करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
The president deserves a lot of credit for taking this step.
राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पहले दौरे पर इस्लाम के उदय स्थल और दो पवित्र मस्जिदों के स्थान सऊदी अरब आने और फिर उसके बाद इसराइल और वेटिकन जाने और यहूदी और ईसाइयों से मिलकर बात करने और तीनों धर्मों को करीब लाने की कोशिशें करने के लिए अपार श्रेय दिया जाना चाहिए। एक और ट्रंप के भाषण में जहां दुनिया भर की रुचि रही वहीं अमरीका में वो FBI के निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटाने के बाद लगातार घिरते जा रहे हैं और उनके बारे में वहां नकारात्मक खबरें ही ज्यादा आ रही हैं।
ट्रंप की बातों को मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उनके दौरे का दूसरा पड़ाव इसराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र है। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के दौरे से जुड़ी खबरें आप bbchindi.com पर विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख भारत का करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज से अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस में 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत और जापान के प्रतिनिधि अलग से मुलाकात करेंगे और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। भारत जापान की इस मुलाकात को कई लोग चीन को जवाब के तौर पर देख रहे हैं। इसे लेकर हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने एशिया प्रशांत मामलों के जानकार डॉक्टर राहुल मिश्रा से बात की और सबसे पहले पूछा कि क्या इस बैठक को चीन को जवाब के तौर पर देखा जा सकता है।
देखिए, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग है
मुझे लगता है कि उसमें भारत की हिस्सेदारी पहले से रही है। भारत की अफ्रीका के साथ विकास के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दों पे हमेशा से ही अफ्रीका के साथ खड़ा रहा है, उसमें मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि 24 मई को जो भारत और जापान की एक मीटिंग हो रही है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मीटिंग, मुझे लगता है कि वो एक अहम पहलू है। लेकिन ये कहना थोड़ी सी जल्दी होगी कि ये भारत कोशिश कर रहा है कि ओबोर जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसको टक्कर दे सके। खास चीज जरूर हो रही है कि भारत आज कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तैयार हो रहा है कि उसे विश्व व्यवस्था में एक बड़ा और अहम रोल प्ले करना होगा, और उसके लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि एक लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा।
जापान भारत को सामरिक तौर पर क्या इस तरह की कोई ताकत या कोई ऐसी मदद दे सकता है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि भारत की सीमाएं चीन से लगती हैं लेकिन जापान से नहीं लगती हैं।
देखिए, सामरिक तौर पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। भारत का अगर हम बजट देखें, डिफेंस रक्षा बजट देखें, तो वो करीब करीब $50 बिलियन के आसपास आता है। अगर हम मिलिट्री बुलेट टू बुलेट कंपैरिजन करें तो उसमें चीन से भारत बहुत पीछे है। जैसे कि सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी या मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें भारत और जापान दोनों ही चीन से पीछे हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है जापान और भारत की सेनाओं के बीच में, वो ये कि जापान की सेनाएं जो है हम कह सकते हैं कि वो स्मार्ट आर्मी है, तो भारत उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकता है। U2 उनका एक टेक्नोलॉजी है, वो भारत ले सकता है। उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर के और सबमरीन्स को लेकर के भारत और जापान में बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच में ये डिस्कशंस भी हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का अब तक रक्षा बजट ही उतना नहीं है।
भारत और जापान अगर मिल जाएं तो वो चीन का क्या बिगाड़ सकते हैं या चीन को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं?
देखिए, भारत और जापान मिलकर चीन का कुछ बिगाड़े, मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर ये होगी कि भारत और जापान मिलकर के चीन के साथ एक प्रतिद्वंदिता में चले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है जो चीन ने वन बेल्ट वन रोड का प्रपोजल दिया है उसी के लाइंस पे भारत और जापान भी कहीं ना कहीं एक अनऑफिशियली सही एक एशिया अफ्रीका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात सामने आ रही है। भारत और जापान की अगर सहमति बनती है तो बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि भारत और जापान मिलकर श्रीलंका के त्रिंकोमाली पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, भारत उसमें बहुत दिनों से बल्कि वर्षों से लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर जापान थोड़ी सी मदद भारत को कर देगा तो मुझे लगता है भारत और जापान की मैत्री के लिए भी और चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मीकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे कीनिया तंजानिया मोजाम्बिक ग्रोथ जोन के साथ जोड़ा जाए, तो इनको अगर हम जोड़ें तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भारत और जापान का काउंटर प्रपोजल होगा चीन के वन बेल्ट वन रोड के कॉन्टेक्स्ट में।
डॉक्टर राहुल से बात कर रहे थे निखिल रंजन। रुख झारखंड का, जहां बच्चा चोरी के अफवाह को लेकर हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत होने से कई जगह पर तनाव बना हुआ है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में 18 मई को कथित तौर पर भीड़ के हमले में मारे गए 2 लोगों के शव का पोस्टमार्टम 3 दिन बाद हो सका। सुनिए जमशेदपुर से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
यह आवाज कुंती देवी की है, जिनके 2 जवान बेटे विकास कुमार वर्मा और गौतम कुमार वर्मा को उन्मादी भीड़ ने 18 मई की रात बागबेड़ा इलाके में पीट पीट कर मार डाला था। उस रात विकास व गौतम अपनी दादी रामसखी देवी, दोस्त गंगेश गुप्ता और भाई उत्तम कुमार वर्मा के साथ अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी तीरधनुष से लैस हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें नागडी गांव में रोक लिया। भीड़ में शामिल लोगों ने उन पर बच्चा चोर होने का आरोप लगाकर खंभे से बांध दिया, फिर उनको इतना पीटा कि विकास, गौतम और गंगेश की मौके पर ही मौत हो गई। पिटाई से बुरी तरह घायल उनकी दादी रामसखी देवी अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। भीड़ से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल भागने वाले उत्तम कुमार वर्मा अपने भाइयों की मौत के बाद खौफजदा हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुलिस अगर चाहती तो उनके भाई बच सकते थे, क्योंकि पुलिस के गांव में पहुंचने तक उनके भाई जिंदा थे। गांव वालों ने उन्हें बंधक बना रखा था। उत्तम कुमार वर्मा ने बताया,
थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है। अगर थाना प्रभारी की मौजूदगी में हत्या हुई है, कहीं ना कहीं उन पे भी केस बनना चाहिए।
वहीं जमशेदपुर के सिटी SP अनूप मैथ्यू ने BBC को बताया कि हमने जांच प्रारंभ कर दी है, अगर कोई दोषी मिलेगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।
आज करके उसमें देखते हैं कि क्या है, किस परिस्थिति में है, कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, तब क्या परिस्थिति थी वहाँ पर, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अपेक्षित थी, क्या कर देना चाहिए था, वहाँ पर फोर्स किस तरीके का था, वो भी देखना पड़ेगा। पर जो पुलिस पदाधिकारी थे वो उस समय वहाँ पे क्या निर्णय लेकर कैसा
इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप भी कुछ संगठनों और लोगों पर लगाया जा रहा है। जबकि बच्चा चोरी की अफवाह में मरने वाले लोग हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानने के लिए जब मैंने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विष्णु राजगरिया से बात की तो उन्होंने कहा,
समाज में जिस तरह की जो गलत चीजों को लगातार फैलाया जा रहा है, एक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, या जिस तरह से पूरे देश में ये चल रहा है ना, ये तो खाली यहाँ का बच्चा चोरी का मामला नहीं है, किसी भी वजह से आपको अगर लगता है कि कोई सामने वाला अपराधी किसी ने कुछ गलत किया है तो कोई भीड़ जो है उससे जाकर के उसका न्याय कर सकती है। और ये चीज आप चाहे वो गौ गुंडों के रूप में देखिए या आप जो प्रेमी जुगल को पकड़ करके पीटने के रूप में देखिए,
इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, समाधान क्या होगा?
सॉल्यूशन यही है कि देश को गांधी के रास्ते पर ले जाना है कि गोडसे के रास्ते पर ले जाना है, इस पर विचार करना पड़ेगा।
दरअसल झारखंड में भीड़ द्वारा हिंसा की कोई नई वारदातें नहीं है, पहले भी भीड़ ने सरेआम हिंसा की है। ऐसे में सरकार को इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी, अन्यथा लोग ऐसे ही उन्मादी होंगे और ऐसी घटनाएं बार बार हमारे सामने आती रहेंगी। रवि प्रकाश, BBC के लिए जमशेदपुर में।
दिल्ली में कल भीम सेना की अगुवाई में दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। यहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों पर हुए कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई। भीम सेना का नाम हाल ही में चर्चा में आया है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने दलित विचारक सुभाष गताड़े से बात की और सबसे पहले पूछा कि अलग अलग जातियों की सेना बनाना भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना उचित है।
देखिए, अगर भीम सेना के नाम से अगर कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, लेकिन अगर आप उनके लोगों के इंटरव्यूज पढ़ेंगे, उनके लेखों को पढ़ेंगे, तो वो संविधान के दायरे के तहत वो काम करने की बात करते हैं। लेकिन इन जनरल मेरा मानना है कि अगर ऐसी समानांतर सेनाएं अलग अलग खड़ी होने लगेंगी तो जो ज्यादा मिलिटेंट या संघ से अगर काम करेंगी तो ये लोकतंत्र के लिए एक अलग ढंग से चैलेंज हो सकता है। लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि हमें उसके ग्रीवांस की जड़ में जाना चाहिए। ऐसी सेनाएं जो कि भाई किन वजहों से दलितों को, जो समाज के सबसे उत्पीड़ित तबके हैं, क्यों उनको ऐसी मिलिटेंट प्रोटेस्ट का गठन करना पड़ा, मिलिटेंट संगठनों का गठन करना पड़ा, मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी होगा समझना।
वजह क्या देखते हैं?
एक तो जो दलितों के हितों के लिए जो काम करने वाली जो बड़ी पार्टियां जो अपने आप दावा करती हैं, या तो अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं वो, या तो वो सिर्फ सत्ता की राजनीति में लिप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से जो दलित आबादी पर अत्याचार हो रहे, जो एक दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उसको कोई जुबान नहीं मिल पा रही। और दूसरी वजह देखता हूँ कि जो पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है पिछले कुछ दिनों से या कुछ समय से, जिसमें सेंस ये जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की बात की जाए, अपने आप को अंबेडकर का वारिस घोषित किया जाए, लेकिन दलितों की वास्तविक स्थिति के बारे में, कुछ कदम उठाने के बारे में अधिक से अधिक दूर रहा जाए, ये एक जो विरोधाभास दिख रहा है। तो ये जो एक दोहरा व्यवहार प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर दिख रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में हो रही है, और मैं किसी भी रूप की हिंसा को मैं निंदा करता हूँ, मुझे वो क्लियरली हम लोग होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरह होना चाहिए, लेकिन हमें कारणों को समझना होगा।
आपने कहा कि जो राजनीतिक दल इनकी नुमाइंदगी करने का दम भरते हैं वो अप्रासंगिक हो रहे हैं या फिर वो सत्ता की राजनीति में उलझे हुए हैं, ये क्यों संभव नहीं हो पाता कि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उन पार्टियों को ही या उन दलों को ही इस बात के लिए समझाया जाए, विवश किया जाए कि वो सबके बात कर सकें? इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, इस बारे में कोशिश क्यों नहीं होती?
ये जो अलग अलग स्तर पर दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये मुख्य धारा की पार्टियों को मजबूर करेगा कि वो अपनी कथित अप्रासंगिकता कह सकते हैं या जो सत्ता प्रेम ज्यादा दिख रहा है उस पर उसकी जो पॉलिसीज को लेकर के रिवाइज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये जो जन आंदोलन है अलग अलग दिख रहे हैं वो मजबूर कर सकते हैं, मेरा मानना है। उससे सामाजिक जैसी व्यवस्था रही है, विशेषाधिकार मिले हो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, समाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो भावना निर्मित हुई है उसी का प्रतिबिंबन के तौर पर मैं देखता हूँ।
सुभाष गदाड़े से बात कर रहे थे निखिल रंजन। और दिल्ली से छपे अखबारों ने इस खबर को कितनी जगह दी है, इस प्रदर्शन को दिलनवाज पाशा बताने के लिए मौजूद हैं।
जी, मैंने सभी अखबार देख लिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर नहीं है।
इंडियन एक्सप्रेस ने जगह दी है।
जी, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है। वास्तव में आजकल रोज ऐसा होता है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्र मुझे मैसेज करते हैं, उसमें किसी घोटाले की बात होती है, मैं कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता, लेकिन अगले दिन वो अखबार में उनका बयान जरूर छपा होता है। और आज भी ऐसा ही है, दैनिक जागरण ने लिखा है, कारोबारी ने कराई थी आपके नेताओं की विदेश यात्रा, कपिल मिश्र का बयान, इस पर पहली बार कल
चुप्पी तोड़ दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने।
उन्होंने बस इतना कहा है कि झूठ है आरोपों पर, मैं क्या जवाब दूं,
आरोप है आरोपों का क्या।
जी बिल्कुल। और एक और खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया में है, दुखी करने वाली ये खबर है, उल्हासनगर में खाना चुराने पर दो बच्चों को नंगा घुमाया गया और उनके गले में जूतों की माला तक लटका दी गई। ये एक
इस तरह की खबरें
जी बहुत
बढ़ रही हैं।
जी इस तरीके के मामले होते जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और खबर है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर मुद्दे का स्थायी हल जल्द ही निकाल देगी और इसके लिए अगर पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा तो हम उसको भी बदलेंगे। ये राजनाथ का बयान भी आज के अखबारों में है।
इस हल की बड़ी उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया दिलनवाज विस्तार से समीक्षा के लिए।
आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह।
मोदी सरकार के तीन साल, कौन कितना खुशहाल, कौन कितना बेहाल।
युवक के भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी इनका खरा नहीं उतरा है, किसी भी सेक्टर में, चाहे एकेडमिक सेक्टर हो, चाहे आपका आईटी सेक्टर हो।
अच्छे दिन लाने के इरादे और विकास के वादे।
एक चीज है, उन्होंने पीएमओ में एक डिसाइसिवनेस लाया है। पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहाँ में कोई आदमी नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी।
कुछ लोगों को जो देशवासी बाहर हैं उनको इकट्ठा करके जय जयकार के नारे लगा लेने से कोई रिलेशन बनता नहीं है। आपने अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश की, आपका रशिया से संबंध खराब हो गया।
आंकड़ों और तथ्यों की रोशनी में कैसे दिखते हैं दावे?
ये नहीं कह सकते कि जो जीडीपी ग्रोथ तो घटी है इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, पुरानी परिस्थिति थी वो भी आगे आई है।
पड़ताल करती विशेष रिपोर्टें, विश्लेषण और पूरी जानकारी बीबीसी हिंदी रेडियो और bbchindi.com पर 22 मई से।
तो आज से सुनना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाने वाले भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों जगह सुर्खियों में है। इस मामले में मीडिया की सक्रियता पर वस्तुल्ला खान ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली है, सुनिए उनकी पाकिस्तान डायरी।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण की फांसी मुकदमे का फैसला आने तक रुकवा दी, मगर अब हम मीडिया वाले क्या करें, हमने तो अपना सारा सामान पहली पेशी पे ही बेच दिया। पाकिस्तानी वकील ने तर्क वतर्क में भारतीय दलीलों के परखचे उड़ा दिए। भारतीय वकील ने अपने प्रोफेशनलिज्म से न्यायालय के जजों का दिल लूट लिया। भारतीय वकील ने अपने देश के लिए मुकदमा लड़ने की सिर्फ 1 रुपया फीस ली और पाकिस्तानी वकील ने 5 लाख पौंड। अरे झूठ क्यों बोलते हो, शर्म करो, पाकिस्तानी वकील ने भी सिर्फ 1 पौंड फीस ली है। पता है भारत का पहली पेशी में पलड़ा क्यों भारी रहा? क्योंकि ये जो सज्जन जनरल नवाज शरीफ से चुपके से मिलाया था ना, उसने सलाह दी थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा रहे हैं, तुम कोई कमज़ोर सा वकील भेजना, क्या समझे? नवाज शरीफ ने कहा जी 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 जी। अरे क्या बकवास लगा रखी है, नवाज शरीफ को तो मीडिया से पता चला कि कुलभूषण को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो फिर नवाज शरीफ बिना पूछे अपनी मर्जी से वकील कैसे चुन सकता है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि इधर किसी देश ने दरख्वास्त दी, उधर झट से तारीख भी लग गई और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते बाद की, ताकि पाकिस्तान को तैयारी का मौका ही ना मिल सके। हो ना हो, न्यायालय का रजिस्ट्रार भारत से मिला हुआ है। अरे घबराने की बात नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम देखते जाना, इस बार पाकिस्तानी टीम एक एक सवाल के जवाब की तैयारी करके जाएगी और अगली पेशी में तमाम 16 जजों को मानना पड़ेगा। अबे 16 नहीं, 11 जज थे, अब जितने भी थे तो जज ही ना। हाँ तो इन 11 जजों को मानना पड़ेगा कि कुलभूषण जासूस था, उसे पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया। हमें मौका ही कहाँ मिला उसके इकबाली बयान की वीडियो दिखाने का, वरना तो पहली पेशी में ही मामला निपट चुका होता। दिखा देते ना वीडियो भी, तुम्हारे वकील को जो 90 मिनट बोलने के लिए मिले थे उसमें वो 45 मिनट ही बोल पाया, तो बाकी वक्त में दिखा देते ना इकबाली बयान की वीडियो। ओहो, तो अब ये भी तुम हमें ही बताओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? हमें क्या तुमसे अनुमति लेनी पड़ेगी? पहली पेशी में ही अगर वीडियो दिखा दी होती तो अगली पेशी में कद्दू सस्पेंस रहेगा। बात यह नहीं कि वो जासूस है या नहीं, बात यह है कि क्या वियना कन्वेंशन के अनुसार उसका ये हक बनता है कि नहीं, कि उसके देश का कोई अधिकारी उससे मिलके ये पूछ सके कि भैया कुलभूषण तू क्या कहता है, तू कब कहाँ और कैसे पकड़ा गया और तू ईरान में क्या कर रहा था? अब तुझे छुड़वाने की मुसीबत और ना छूटा तो अलग मुसीबत। اب جب فیصلہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں تو کسی کے خلاف ہوگا، مگر دونوں طرف کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ فیصلہ 16 آنے یہی آئے گا، مگر تب تک کیا کریں، کون کون سی گھٹنا نوچ نوچ کے کھائیں، ایک تو بھوک اتنی لگی ہے، اوپر سے اس رام پیٹی اللہ ماری عدالت نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیوں محفوظ کر لیا بھائی، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ کیس تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہم میڈیا سے ہی سیکھ لو فیصلہ کیسے دیتے ہیں، ابھی گھٹنا کا گاؤں بسا بھی نہیں ہوتا اور ہم پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ بسنے کے بعد برباد کیسے ہوگا اور کون کون کرے گا، اب دے بھی دو نا فیصلہ، ورنہ ججی وجی چھوڑو اور ہماری طرح پترکار بن جاؤ۔
وسط صاحب کی ڈائری پر آپ کی رائے کا ہمیں رہے گا انتظار، اور اب آئی پی ایل فائنل کا حال کھیل اور کھلاڑی میں۔
کھیل اور کھلاڑی کارکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ سانس روک دینے والا آئی پی ایل 10 کا فائنل جیتا ممبئی انڈینز نے، اور سمیکشا کیسا ہوگا اگلا اوتار آئی پی ایل کا۔ کارکرم کی شروعات آئی پی ایل 10 کے فائنل سے، جہاں ممبئی انڈینز نے حیدرآباد میں رائزنگ پونے سپر جائنٹس کو کیول ایک رن سے ہرایا۔
پہلی بار آئی پی ایل 2017 میں رائزنگ پونے سپر جائنٹس کو ہرایا، اور وہ بھی فائنل میں۔
پونے کے سامنے جیت کے لیے 130 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن پورے 20 اوور کھیل کر بھی وہ 6 وکٹ کھو کر 128 رن بنا سکی۔ حالانکہ اجنکیہ رہانے نے 44 اور کپتان سٹیو سمتھ نے 51 رنوں کی زوردار پاری کھیلی، لیکن مچل جانسن اور جسپریت بمراہ نے گھاتک گیند بازی کر پونے کے فائنل جیتنے کے سپنے کو چکنا چور کر دیا۔ جانسن نے 26 رن دے کر 3 اور بمراہ نے 26 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ ممبئی کو تب بھاری پڑا جب اس کی آدھی ٹیم کیول 65 رنوں پر سمٹ گئی، اور اس کے بعد اس نے جیسے تیسے نردھارت 20 اوور میں 8 وکٹ کھو کر 129 رن بنائے۔ وہ تو کرنال پانڈیا نے 47 رن بنا کر ٹیم کو تھوڑا بہت سمان جنک اسکور تک پہنچایا۔
So 3 times winners the Mumbai Indians in the last 10 years, and I request the team to join Rohit Sharma on the stage.
ایسا میچز آپ کو اگر جب جیتنا ہے تو وہ پریشر ہمیشہ بنائے رکھنا ضروری ہے، ایک اوور بھی یہاں وہاں نہیں ہو سکتا ہے، تو کوشش یہی تھی ٹائٹ بولنگ ڈالنا ہے، فیلڈنگ ایفرٹ 100% نہیں 100% سے زیادہ دینا ہے۔
اب سمیکشا کی اگلی بار کا آئی پی ایل کیسا ہوگا، کیا 8 ٹیمیں ہی کھیلیں گی یا 10، اس پہیلی کو تھوڑا سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کرکٹ سمیکشک ایاز میمن۔
سب پلیئرز 10 سال کے بعد واپس سے آکشن میں آئیں گے تو بہت سارے بدلاؤ دیکھنے ملیں گے، جیسے ممبئی کی ٹیم ہے، کون سے پلیئرز وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور کس قیمت پہ، چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کی واپسی ہونے والی ہے، 8 ٹیم جو اوریجنل تھی وہ واپس آ جائے گی، لیکن نہ صرف پونے اور گجرات لیکن دوسرے شہروں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں انٹرسٹ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کیلنڈر بنتا ہے، اوورسیز پلیئرز کتنے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، بڑا ایک دلچسپ موڑ آ گیا ہے آئی پی ایل کے اتہاس۔
ویسے جو بھی ہو، اس بار کا آئی پی ایل بڑے ویوادوں سے بچا رہا۔ کھیل اور کھلاڑی کارکرم میں آج بس اتنا ہی،
اور آئی پی ایل فائنل میں مین آف دا میچ چنے گئے کرنال پانڈیا نے میچ کے بعد کہا کہ مین آف دا میچ چنا جانا فائنل میں ایک خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے۔ انہوں نے فائنل میچ میں کیا کمال دکھایا، اگر آپ وستار سے جاننا چاہتے ہیں تو رک کر سکتے ہیں bbchindi.com کا۔ وقت آپ سے ودا لینے کا ہے، لیکن پہلے سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار ایک بار پھر دل نواز پاشا سے۔
سعودی عرب میں دیے اپنے بہو پرتیکشت بھاشن میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا ہے کہ چرم پنتھ کے خلاف لڑائی دھرموں یا سبھیتاؤں کے بیچ لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے برائی سے اچھائی کی لڑائی بتاتے ہوئے مسلم دیشوں کے نیتاؤں سے اپنے دیشوں سے چرم پنتھ کو ختم کرنے کا آہوان کیا۔ اتر کوریا کی سرکاری میڈیا نے پشٹی کی ہے کہ رویوار کو داغی گئی میزائل میں سالڈ فیول ویپن کا پریکشن کیا گیا، جس کا انتم بار فروری میں پریکشن کیا گیا تھا۔ سیریا کی سرکار کا کہنا ہے کہ دیش میں گرہ یدھ شروع ہونے کے بعد سے پہلی بار سرکاری سینیہ بلوں کے پاس مدھیہ شہر ہومس کا سمپورن نینترن ہے۔ وشو سواستھیہ سنگٹھن نے یمن میں ہیضہ پھیلنے پر چنتا ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ابھوتپورو گتی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہیضہ سے 250 کے لگ بھگ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ब्राजील की पुलिस ने साओ पाउलो के मध्य इलाके से ड्रग तस्करी संबंधी आरोपों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद प्रदर्शन हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।